नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है गांव आजीविका और हम। इसमें कंपोस्ट खाद को बनाने की क्या विधि है, इसको किसानों को किस तरीके से लाभान्वित होंगे, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में इसके किसानों के लिए लाभकारी कैसे सिद्ध हो सकते हैं। आज हमारे साथ एक सलाहकार है जो कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए छात्र भी रहे हैं। भीमेश्वर जी, मोबाइल लेने पर स्वागत सर आपका।
सर, आपका भी स्वागत सर, और आप सभी लोगों का भी आकाशवाणी में स्वागत
सबसे
है।
पहले सर, किसानों के लिए कितना फायदेमंद है सर, केचुआ खाद बोलिए या कंपोस्ट खाद का जो उपयोग करेंगे किसान या करते हैं, उनके लिए कितना फायदेमंद होगा खेती से जुड़े हुए लोगों के लिए?
सर, वर्मी कंपोस्ट खाद किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे माना जाता है कि किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है, जो बहुत से जमी उसमें बहुत से तत्व पाए जाते हैं वर्मी कंपोस्ट में, और जो लाभदायक मृदा को लाभदायक बनाया जाता है, और इससे मृदा में तत्वों की भरपूर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराता है। और वर्मी कंपोस्ट बनाने की जो विधि है वो बहुत ही सरल है। एक केचुआ पर्याप्त मात्रा में अपने को 45 दिनों में खाद अवेलेबल करवा देता है।
सर, क्या इस वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से खेती किसानी को लाभदायक व्यवसाय बनाया जा सकता है इस पद्धति के माध्यम से?
हाँ सर, जैसे वर्मी कंपोस्ट के द्वारा किसानों को बहुत से लाभ मिलते हैं, और इससे अपो वर्मी कंपोस्ट द्वारा मार्केट में इसको बेच भी सकते हैं। जैसे बिजनेस के तौर पे इसको हम बेच भी सकते हैं, और इसे बनाने के लिए ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में लागत नहीं आती, कम इसमें तैयार हो जाता है।
जी सर। सर, क्या केचुओं को जो जमीन में होते हैं तो कोई अगर फर्टिलाइजर या अन्य कोई खादों का उपयोग करके इसमें कोई नुकसान पहुंचता है, और पहुंचता है तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्रदान करेंगे?
सर, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है सर। बहुत से किसान अभी वर्तमान में बहुत से किसान रासायनिक का ज्यादातर यूज कर रहे हैं, कीटनाशक दवा, और ऐसे बहुत से प्रकार की दवाइयां छिड़काव करने से जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम होती जा रही है, और जो जमीन के अंदर जो केचुआ पाया जाता है वो भी बहुत कम मात्रा में अभी दिख रहे हैं जमीन में। और जैसे कीटनाशक दवा छिड़कते हैं तो केचुए मर रहे हैं, और जैसे पुराने जमाने में जो खेती करते थे उसमें गोबर खाद डालते थे, उससे अधिक मात्रा में केचुए बढ़ते थे, और मिट्टी में भी अभी ऊपर से काई की तरह अभी वर्तमान में देखा जाए कि खेती में तो ऊपर की ओर काई सी बन रही है। इससे बहुत ही मात्रा में पानी भी अंदर जा जमीन में ज्यादा अंदर नहीं जा पाता है।
सर, वर्तमान समय में जिस तरीके से रासायनिक खादों का जो उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, और एक तरफ अपन वर्मी कंपोस्ट बोलिए या केचुआ खाद का उपयोग बोलिए, तो इसको लेकर किसानों में क्या जागरूकता लाने की आवश्यकता है और इसके क्या फायदे हैं, इसको किस तरीके से बताना चाहेंगे कि किसान इस खाद का उपयोग करे और अपनी फसलों में या खेतों को बेहतर लाभ के दिशा में अग्रसर करें, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?
सर, जैसे पहले पहले के जमाने में लोग अपने घरों में पशु पालते थे,
जी
और पशु पालने से उससे गोबर उत्पन्न होता था, तो वो खेतों में डालते थे, और अधिक मात्रा में वो खेतों केचुए उत्पन्न होते थे खेतों द्वारा। अभी वर्तमान में ना लोग पशु पालने की सोचते हैं ना ये, तो वर्मी कंपोस्ट के द्वारा फसल में बढ़ोतरी होती है। और जैसी मान लीजिए अगर किसी प्लाट को, किसी खेत के प्लाट को अगर वर्मी कंपोस्ट डाला, तो वो खेती को एक आदत सी पड़ गई है रासायनिक खाने। तो इसी कारण अगर जैसे पहले साल अगर उसमें वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो उसमें कम मात्रा में उत्पादन होगा, अगले साल और प्रोडक्शन बढ़े, धीरे धीरे वो जैविक होती जाएगी खेती। और किसानों को अभी वर्तमान जैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा बोला गया है कि किसानी जो कर रहा है वो रासायनिक यूज न करके जैविक की तरह से खेती की जाए।
सर, क्या कई प्रकार के कीटनाशक है वो केवल रासायनिक में ही है? तो क्या अगर एक जैविक खेत में रासायनिक कीटों का उपयोग करते हैं तो इससे जो हमारे केचुए है या वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से इसका कितना प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव देखते हैं सर फसलों पर?
सर जैसे देखा जाए, जैसे रासायनिक कीटनाशक अगर छिड़काव करते हैं तो उससे बहुत ही मात्रा में केचुए मर रहे हैं। जैसे कीटनाशक को अगर खत्म करना है फसल के ऊपर से, तो जैविक तरीके से भी उसको दवाई बना सकते हैं। जैसे जो ऐसे बहुत से प्रजाति की जो फसलें हैं, पत्तियां हैं पेड़ों की, जो पशु नहीं खाते हैं, उसको लाके उसको मिक्सी में बारीक करके और उसमें एक बड़े ड्रम में डाल के सड़ाने, जैसे सड़ा के उसकी विधिवत जैसे उसमें गुड़, चना, चने का आटा और गोमूत्र, गोबर ताजा, अगर ये मिला के अगर उसको 8 से 10 दिन तक अगर सड़ाते, फिर उसका छिड़काव करते हैं, तो रासायनिक दवा से ज्यादा बेहतर मात्रा में अपना ये जैविक का जो घोल बना के मारेंगे उससे ज्यादा मात्रा में लाभदायक भी होगा।
जी सर। सर, वर्तमान परिवेश में जो रासायनिक खातों का है वो निरंतर प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या जो किसानी खेती किसानी के लोगों को ज्यादा और जानने की ये होना चाहिए कि खेती किसानी के लोग भी जैविक खेती की ओर अग्रसर हो, इसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर?
सर अगर मान लीजिए, सर अभी तो बहुत ही मात्रा में लोग रासायनिक खातों का उपयोग कर रहे हैं, जैसी अगर वो एकदम से अगर जैविक खेती अगर अपनाते हैं तो उनको भारी मात्रा में हानि होगी। क्यों? क्योंकि पहले रासायनिक दे दे कि जमीन को हमने ज्यादा उत्पादन निकाल लिया, उसकी जमीन की उर्वरक शक्ति कम हो गई है। जैसे अगर उसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो उससे थोड़ी मात्रा में उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। ऐसा कर करके कम से कम खेती को अगर उत्पादन क्षमता बढ़ानी है तो 3 से 4 साल लगेंगे जो पूर्ण तरीके से वो जैविक बन सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा था कि जैविक खेती की ओर बढ़िए, क्योंकि हरित क्रांति के समय जब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब हरित क्रांति की शुरुआत की थी, उस समय कुछ समय के लिए उन्होंने कहा था कि इस रासायनिक खातों का अपने को उपयोग करना है, फिर कुछ समय पश्चात इसको बंद कर देंगे।
जी
तो इससे बहुत ही मात्रा में ये हुआ। लेकिन आज वर्तमान में देखिए, पंजाब राज्य है जो वहां पे हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, वहां पे अभी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो,
सिक्किम राज्य में अधिक
और
खेती की जाती है प्राकृतिक
उसमें
खेती।
पंजाब राज्य में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट मिल पाए जाते, क्योंकि वहाँ कि जमीन में रासायनिक इतना घुल गया है कि वो जमीन अभी बंजर होने लगी।
अच्छा
और ऐसी एक सिक्किम राज्य है, वहां पे 100% पूर्ण जैविक खेती की जाती है।
अच्छा
वो राज्य आज जैविक खेती के इसमें फर्स्ट नंबर आता है। वैसे ही अदर कंट्रीज से भूटान 100% जैविक खेती अपनाता है।
तो ये थे हमारे साथ भीमेश्वर जी ठाकरे, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर गांव आजीविका हम में केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। भीमेश्वर जी मोबाइल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
धन्यवाद सर जी आपका भी।
बड़ा वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।